जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों का श्री मान मंदिर धाम में स्वागत है। हरि बोल। ये बहुत ही उत्कट धाम है, बहुत ही तीव्र, वेरी इंटेंस प्लेस। राधा रानी और प्रेम कृष्ण, इनके बीच में जो प्रेम है वो अलौकिक है, और हमारी दुनिया के किसी भी प्रेम वाले समझ से हम इनकी प्रेम की समझ नहीं प्राप्त कर सकते। राधा रानी का जो प्रेम है उसको महाभाव कहते हैं, और 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग भावों से महाभाव बनता है, और उसका उगम राधा रानी से होता है, फिर वो महाभाव कृष्ण को प्राप्त होता है, और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण एक साथ हैं, और क्योंकि कृष्ण के पास है इसलिए जगन्नाथ जी भी उनका स्वरूप है, इसलिए उनके पास है, और किसी के पास में महाभाव नहीं है, क्योंकि महाभाव प्रत्यक्ष मूर्तिमान महाभाव राधा रानी है। तो महाभाव में 8 प्रेम के अंग होते हैं, उसमें से एक अंग है मान, जिसको हम दुनिया की भाषा में क्रोध के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं है। क्रोध की व्याख्या इस प्रकार की जाती है, जो क्रोध बेसिकली स्वार्थ के लिए होता है। क्रोध का उगम जो है वो अतृप्त काम वासना है। दुनिया में हम इंद्रिय भोग की प्रयास करते हैं, और जो हमको इंद्रिय भोग चाहिए वो नहीं मिलता है तो हमको गुस्सा आता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध की सिंपल व्याख्या है, जब भी हमारे मन के खिलाफ कोई चीज होती है तो हमको क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध का जो अस्तित्व है वो स्वार्थ पर आधारित है, और मान का जो अस्तित्व है वो प्रेम पर आधारित है। राधा रानी जब मान करती है तो वो केवल कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए मान करती है, इसलिए समझना बहुत मुश्किल है। इस जगह की जो लीला है वो बहुत ही अनाकलनीय है, इनकंसीवेबल, समझने के लिए बहुत मुश्किल। हम केवल यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं कि राधा रानी का एक ऐसा भाव है भगवान के प्रति, जो केवल उनके प्रेम को करोड़ों गुना बढ़ाने के लिए मान कर लेती है, और कई प्रकार के कारण हैं उसके लिए जो मान करती है। उदाहरणार्थ, जैसे जब भगवान रास में देर से आते हैं तो वो रुक जाती है। एक बार भगवान रास में लेट आए तो वो रुट गई और जमुना पार गई, और एक जगह बैठकर रोई, और इतने उष्ण नाराजगी के अश्रु बहाए उन्होंने, एक बड़ा कुंड बन गया वहाँ पर, उसका नाम है मानसरोवर। इतना उत्कट धाम है वो कि लक्ष्मी ललिता देवी ने शिवजी को वहाँ पर स्नान करने भेजा था, और शिवजी ने जब वहाँ पर स्नान किया तो शिवजी को गोपी स्वरूप प्राप्त हो गया, वो गोपेश्वर महादेव बन गए। आज भी वो स्थान जमुना जी की उस तरफ है, मानसरोवर। तो ऐसा उनका उत्कट मान है, और श्री कृष्ण की रति और प्रेम को बढ़ाने के लिए वो मान करती है। और एक बार जब राधा और कृष्ण ने इस कुंज में यहाँ पर नीचे, उसका नाम गहवर बन है, उसका मैं पहले बताता हूँ आपको। ये जो श्री जी मंदिर है आप जहाँ से आए, वो भानुगढ़ है, ब्रह्मा जी के 4 सर में से एक सर जो है भानुगढ़ है, जहाँ पर राधा रानी का घर है, वहाँ पर वो विराजती हैं अपने माता पिता और भैया और बहन के साथ। भैया कौन है उनके? श्रीदामा। बहन कौन है? अनंग मंजरी। अनंग मंजरी कौन है? बलराम जी का अवतार है। बलराम जी अनंग मंजरी का अवतार लेकर सखी बनकर कृष्ण और राधा रानी की माधुर्य रस में सेवा करते। तो ये 2 बहन एक भाई का परिवार है, वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया माता पिता हैं, और ये सब लोग भानुगढ़ में विराजते हैं। ये उनका नित्य घर है। नित्य घर ऐसा है कि एक बार जयपुर के राजा ने उनको सोचा कि मंदिर बहुत पुराना हो गया है तो मैं नया मंदिर बनाऊंगा, तो वो जो पीला मंदिर देखा ना आपने, बहुत भव्य मंदिर है, उन्होंने बनाया बहुत मेहनत के बाद, सोचा कि राधा रानी को इधर शिफ्ट करेंगे, अच्छे मंदिर में अच्छी सेवा हो जाएगी। लेकिन जब कल राधा रानी के विग्रह को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, तो आज रात को राजा के स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, मेरा वो निज धाम है, मेरा वो चिरंतन घर है, मैं वहाँ से बाहर नहीं आ सकती। तो इसलिए वो ट्रांसफ़र करने का प्लान कैंसिल हो गया और वहाँ पर नए विग्रह लगे गए। उनका नाम है राधा कुशल बिहारी जी। तो हमारे जैसे शहर के लोगों के मन में कॉमन एक प्रश्न आता है, तो पहले क्यों नहीं बताया है ना, इतना बड़ा मंदिर पहाड़ पर पत्थर लाकर उसको इतना उसका पर काम किया गया, कितने महीने साल लग गए होंगे उसको, कितनी मेहनत की होगी, वो भी पहाड़ के ऊपर। तो अगर आपको आना नहीं था तो पहले स्वप्न में आते ना ये हमारा शहरी माइंड है। लेकिन इसमें जयपुर के राजा का जो समर्पण है वो भाव दिखाई पड़ता है। जयपुर के राजा ने राधा रानी की संतुष्टि के लिए मंदिर बनाया था, अपना गौरव बढ़ाने के लिए नहीं बनाया था कि ये मेरा मंदिर है, ये जयपुर के राजा का मंदिर है। और अगर उससे राधा रानी प्रसन्न नहीं है तो उसके आसक्त नहीं है, ठीक है, आपके आनंद के लिए बनाया, आपको वहाँ पर आनंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहीं रहिए, दूसरे विग्रह स्थापन कर दिया। हम लोग भी बहुत बड़ी सेवा करते हैं, कभी बहुत बड़ा बड़ा काम बहुत साल तक करते हैं और फिर वो फेल हो जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेवा का जो फल है उससे हम आसक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो सेवा से आसक्त होते हैं, सेवा के फल से आसक्त नहीं होते, और सेवा से भी आसक्त नहीं होते हैं, सेवा के स्पिरिट से आसक्त होते हैं, सेवा का जो भाव है उस पर वो आसक्त रहते हैं। तो जयपुर का राजा का मंदिर जो है, जितना आप मंदिर को गौर से देखेंगे उतना आपको राजा का समर्पण ध्यान में आएगा कि इतना सारा महीन, क्या कहते हैं उसको, फाइनेस्ट पॉसिबल डेकोरेशन उन्होंने उस मंदिर में बनाया है कि आज 400 साल हो गए फिर भी कोई मेंटेनेंस इतना खास नहीं है उसका, फिर भी आप देखेंगे कुछ इससे ऐसे है कि जैसे नए लगते हैं आपको आज भी, इतना काम उस पर किया गया है, इतना मेहनत किया गया है, फिर भी वो कितने विरक्त हैं। ठीक है, अगर आपकी संतुष्टि नहीं है आप वहीं रहिए, ये भाव हम सबको आना चाहिए। जयपुर के राजा ने यहाँ पर वो भाव प्रदर्शित किया है, वो दानगढ़ है जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। तो भानुगढ़ उनका महल है राधा रानी का, जहाँ पर कृष्ण जो है वो श्यामा सखी बनकर छुप छुप के आते हैं, सखियाँ उनको श्यामा सखी बनाते हैं, घूंघट ओढ़ते हैं लंबा लंबा और उनको लेकर आते हैं, कई प्रसंग है ऐसे। तो राधा रानी को मिलने के लिए कृष्ण बहुत लालायित रहते हैं, लेकिन राधा रानी के महल में कोई अन्य पुरुष नहीं आ सकता है, इसलिए ललिता विशाखा उनको श्रृंगार करके बड़ा घूंघट ओढ़ के लेके आते हैं। तो कीर्ति मैया उनको रोकती है, पुष्टि कौन है, तो कहते हैं कि ये नई दुल्हन है, नंदगांव से ब्याही हुई आई है, तो बहुत कोमल है, बहुत शर्मीली है और बहुत राधा रानी को जरूर मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको लेकर आए, मना कर लेकर आए, और फिर उसको अंतकक्ष में लेके जाते हैं, फिर उधर लीला होती है उनकी। हरे कृष्णा। तो वो उधर ही यशोदा मैया ने राधा रानी के लिए कीर्ति मैया से विनती की थी, निवेदन दिया था कि आप उनको भेज सकते हैं क्या, उसी जगह पर उत्सव हुआ था, उसी झरोके से बाहर आई थी जब कृष्ण ने उनको होली के लिए पुकारा था। तो कई लीलाएं हैं भानु महल की। फिर दानगढ़ में लीला ये है कि दानगढ़ में भगवान राधा रानी बनते हैं, राधा रानी भगवान का स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि सांकरीकोर नाम की जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी के चार शीश जो है, दो शीश मिलते हैं तो बीच में एक जगह बनती है, रास्ता बनता है, इसमें एक ही व्यक्ति एक दिशा में एक ही बार जा सकता है। तो एक तरफ से बरसाने में सखी आती हैं और एक तरफ से कृष्ण आते हैं और सखियों को रोकते हैं, उनसे टैक्स मांगते हैं कि आप हमारे इलाके में से गुजरते हुए आपका माल ले जा रहे हो और मथुरा में बेच के पैसे बनाने वाले हो, धन बनाने वाले हो, तो हमारे एरिया से गुजर रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है कि आपको इतिहास का पता नहीं है, ये सारा साम्राज्य मेरे पिताजी का है, वृषभानु महाराज का, लेकिन वृषभानु महाराज की नंद बाबा से बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो दोस्ती की खातिर उन्होंने कुछ कुछ इलाका तुम्हारे पिताजी को दान में दिया था, इसलिए तुम कैसे ना वो उधार के राजा हो उधार से दिया हुआ जो धन है उस पर अपना रोब जमा रहे हो, तो तुम यहाँ पे परदेसी हो और यहाँ पर हमारे श्री जी का राज्य है, ऐसे ललिता देवी आग्रह करती, वाद विवाद करती है। तो ऐसे बहुत उसको कहते हैं नोकझोंक, ये कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेंगे फिर ये कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, फिर बोले तुम टैक्स दो, बोले तुमको टैक्स देना चाहिए, तुम हमारे एरिया में क्यों आए। इस तरह से बहुत सारा नोकझोंक होता है उसमें। आखिर में जब नोकझोंक अपनी परिसीमा में पहुंच जाता है तो कृष्ण भगवान झट से राधा रानी के सर के मटके को नीचे गिरा देते हैं, किसको समझ में आने के पहले गिरा देते हैं उसको, और तुरंत गिरे हुए माखन को खाने लगते हैं, चाट चाट के खाते हैं। तो फिर राधा रानी बहुत डर जाती है एकदम, अचानक ऐसा आतंक होता है, तो ललिता देवी सामने आती है और फिर कृष्ण को बहुत जोर से कठोर वचन बोलती। फिर कृष्ण को वो लोग बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बांध लेते हैं, और अपमान के रूप में उसका उसका उत्तरीय छीन लेते हैं, उसका पेटा उतार देते हैं, बंदी बनाकर उसको ले जाते हैं। तो बंदी बनाकर उसका पेटा जो गिर जाता है तो जहाँ से जाता है ऐसे होता है ना, जब अपना तुझे उतर गया तो फिर वो ऐसे ज़मीन पे होके जाता है ना, तो वो जब जा रहा है दुपट्टा उनका सर का पेटा, तो उसका निशान वहाँ बना हुआ है। क्यों निशान बना हुआ है, वो तो पत्थर है, लेकिन ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था ना, तो क्या सोचकर किया था कि कृष्ण और आपके सखियों और सखाओं की चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। तो जब ये उनके सर पर लीला करते हैं तो ब्रह्मा जी जो है भाव विभोर होकर ऐसे पिघल जाते हैं, तो उनका पत्थर जो है वो मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। तो उस पिघले हुए मक्खन पर जब वो फेटा जो है वो जा रहा है तो उसका निशान बन जाता है। तो पिघले हुए पत्थर के ऊपर जब मक्खन गिर जाता है वो खाते हैं, फिर उसके बाद अपने हाथ उसको भी पहुँचते हैं, तो उधर पत्थर पर भी निशान है उनके हाथों के, और एक जगह पत्थर जो है बहुत चिकना है और सफ़ेद रंग का है जहाँ पर माखन गिरा था। वो सब स्थान जो ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं उनका, पत्थर रूप में भाव विभोर होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। तो फिर वो जब एक बार उनको पकड़ लेते हैं, तो जैसे पकड़ लेते हैं सखा लोग आते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं उनको। तो फिर वो बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ दो हमको। तो राधा रानी के सखियाँ ललिता कहती हैं कि एक ही बात पर छोड़ेंगे आपको, आपको कल सखी बनकर आना होगा, अपने घर से बेस्ट मक्खन जो है वो भरकर मटके में लाना होगा, और केवल आपको नहीं सभी सखाओं को अपने घर से मक्खन लाना पड़ेगा, और सबको सखी बनकर आना होगा, और हमारी राधा रानी गोप बनकर आएगी, मटका ले मटका तोड़ने के लिए डंडा लेकर आएगी, और आप यहाँ पर आएंगे हम आपका मटका तोड़ेंगे और खाएंगे, मंजूर। तो बोले मंजूर। तो अगले दिन फिर राधा रानी गोप बनकर आती है और कृष्ण सखी बनकर आते हैं, और राधा रानी मटका तोड़ती है। तो वो जो स्वरूप है कृष्ण राधा रानी बने हुए हैं, राधा रानी कृष्ण बने हुए हैं, वो दर्शन दानगढ़ में है। और भी एक कथा है उसकी कि जैसे रोज आकर रोकते हैं ना, वहाँ पर नित्य लीला है, रोज आकर उनको रोकते हैं, रोज झगड़ा होता है उनका। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि बिना झगड़े के ही तुरंत आते ही बोले ले लो लो मक्खन ले लो। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, आज क्या हुआ, सूरज पश्चिम में होगा क्या? तो बोले कोई सोचो मत, तब ज़्यादा विचार मत करो, बिना झगड़े के मक्खन दे रहे ले लो। तो सखियाँ कहती हैं, सखा बोल के बोलते हैं दे दो। तो सखियाँ कहती हैं कि एक ही हमारी शर्त है, हमारा जो मक्खन है ना बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, तो आपके हाथ में देंगे तो वो हाथ से गिर भी सकता है, इतना मूल्यवान, आप लोग सब दोना लेके आना, तो दोना में आप आराम से दे सकते हो, गिरेगा भी नहीं। तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर, उस समय कदम के वृक्ष पर दोना आते थे रेडीमेड दोना बनाते नहीं थे उसका, दोना बनाते भी थे, लेकिन एक समय पर कदम वृक्षों ने ये तय कर लिया सेवा में आने के लिए कि हम रेडीमेड अपने पत्तों को दोना के रूप में बनाएं, तो सभी कदम के पेड़ पर दोने के रूप में पत्ते आते थे। तो सब सखा लोग भाग गए दोना निकालने के लिए। तो धोनी कुंड है ना, एक धोनी कुंड है यहाँ पर आगे थोड़ा सा, वहाँ पर विश्वानु महाराज अपनी लाखों गायें दोहन कर देते, उसका दुग्ध दोहन मतलब मिल्किंग, तो वो धोनी कुंड है। तो उसका और एक नाम धोनी कुंड है क्योंकि वहाँ पर दोने ही निकलते थे कदम के पेड़ पर। तो सब लोग वहाँ पर पहुँचे और आज हमको बिना झगड़े के बिना मेहनत के आसानी से मखन मिलने वाला, इस आनंद में पेट पे चढ़ गए और दोनों निकालने में मग्न हो गए। तो सखियां पीछे से गई और उनकी चोटियां जो है उन्होंने सब शाखाओं से बांध दी। आपको समझ में आया कुछ? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कैसे चोटियां बांधी होगी उनको, छोड़ाने को कैसे नहीं होती होगी। लंबी लंबी चोटियां थी, अपने आप को छोड़ सकते थे क्यों नहीं सकते थे, ये कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, क्योंकि ये सब लीला अनाकलनीय है, अचिंत्य है। तो वो चोटियां जब बांध दिया उन्होंने तो सब बाल बाल जो है ना अटक गए पेड़ पे, जैसे अरेस्ट हो गए एकदम एक तरह से। और कृष्ण भगवान की चोटियां भी बांध दी गई, बलराम जी की चोटी भी बांध दी गई, सब ग्वाल वालों की चोटी बांध दी गई। तो उसको चुटिया बंधन लीला कहते हैं। चुटिया बंधन लीला। तो वो जब दोना लेके उतरने का प्रयास कर रहे हैं तो सब लोग अटके हुए हैं। हाँ, सब लोग पुकार रहे हैं कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। तो कृष्ण बलराम भी पुकार रहे हैं मधुमंगल सुदामा श्रीदामा सुबल उज्ज्वल। ये तो अजीब बात हुई, क्योंकि जहां पर भी बाकी वृंदावन में जब भी कोई दुख होता है, कोई संकट आता है, तो सब लोग कृष्ण बलराम को पुकारते हैं। वो तभी कृष्ण बलराम आते हैं और संकट का निवारण करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। तो यहां पर भी यही उम्मीद थी कृष्ण बलराम आएंगे कुछ करेंगे, तो वो ही पुकार रहे हैं बेचारे। तो ये कहानी हमको हमारे गुरु महाराज ने साकरी कोर में बताई, साकरी कोर में बताई, और यहां पर कहानी रोक ली और हमको प्रश्न पूछा, बताओ कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं यहां पर। सब लोग देखने लगे एक दूसरे को, क्या होगा उसका उत्तर। तो बोले हम लोग साकरी कोर पार करके नीचे उतरेंगे तब बताएंगे उसका उत्तर क्या है। तो सब लोग ने एक एक करके, हजारों लोगों ने वो पार किया, फिर नीचे उतरे, मतलब बरसाने की ओर सब लोग उतर गए। महाराज बैठ गए, उन्होंने बोला कि पूरे ब्रज में सब जगह भगवान मालिक है, स्वामी है वो। जब जब उनको पुकारते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो गोपाल उनको पुकारते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, संकट का निवारण करते हैं, कोई भी राक्षस उसका वध कर देते हैं। जो भी कुछ संकट हो, वर्षा हो रही तो गोवर्धन को उठा लिया उन्होंने। हर जगह कृष्ण भगवान को पुकारा तो कृष्ण भगवान आए और सबके तारणहार के रूप में उन्होंने संकट का निवारण किया। लेकिन ये बरसाना क्षेत्र जो है ना, इसमें वो असहाय हो जाते हैं, इज हेल्पलेस हियर, क्योंकि राधा रानी का इतना यहाँ पर प्रभाव है, इतना प्रेम का प्रभाव है कि यहाँ पर कृष्ण बलराम सबके स्वामी सबके तारणहार होने पर भी खुद भी असहाय हो जाते हैं। इसलिए जब लोग उनको पुकारते तो वो भी पुकारने लगते हैं। तो फिर सब सखियाँ आई है, राधा रानी भी आई है, और उन्होंने फिर एक शर्त रखी है कि आप लोग हमको बहुत तंग करते हो, अभी उसको छुटकारा पाना है तो कल आपको सखी बन कर आना होगा। तो सब लोग हाँ हाँ हाँ, कुछ भी करो छोड़ो हमको, जो सब कुछ मंजूर है हमको। तो फिर वो अगले दिन सखा बनकर आते हैं राधा रानी, और सखी बनकर कृष्ण आते हैं, और फिर वो मटका तोड़ते हैं उनका। तो दान बिहारी मंदिर में वो दर्शन है उनका। कैसा है ना, अभी आप आएंगे दर्शन करेंगे, ठीक है राधा कृष्ण है, लेकिन गौर से देखेंगे ना तो जो कृष्ण बने हुए हैं ना, कृष्ण विग्रह है, उसके गले में मंगलसूत्र है, देखा क्या आपने, हाँ चूड़ियाँ भी पहने हुई है। हाँ, तो मैंने पहले भी आपको बताया था प्रवचन में कि ये भाव की भूमि है, दिखने में आपको ये दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई बताएगा तो आपको समझेगा कि इसके पीछे कुछ रहस्य है, दिखता वैसे नहीं है, कुछ और अलग चीज़ है इधर। तो हर चीज़ में ऐसा ही है यहाँ पर। अभी आपने ये दर्शन किया, भानुगढ़ में दर्शन किया श्रीजी मंदिर में, तो एक चुनरी राधा रानी ने ओढ़ी हुई है, और एक बड़ी चुनरी जो है ना उसे पीछे लंबी सी कृष्ण के सर से ऊपर जा रही है। मतलब क्या, आपके लिए राधा कृष्ण है, लाडली लाल दर्शन दे रहे हैं कृष्ण भगवान, लेकिन कृष्ण वहाँ पर सखी बने हुए हैं। सखी बनकर रहते हैं। एक श्लोक है उसका जिसमें राधा रानी उनको विनती करती है कि आप हमारे यहाँ पर सखी बनकर हमारे यहाँ पर ही रहो, क्योंकि एक जगह पर एक भाव से पांच जगह पर राधा रानी कृष्ण का विवाह हुआ है, वृंदावन नंदगांव संकेत भांडीरवन और वृंदावन नंदगांव संकेत और भांडीरवन, और एक जगह भूल रहा हूँ मैं, दो जगह पर पांच में से ब्रह्मा जी ने पौरोहित किया है, पौरोहित बनकर विवाह किया है, बाकी जगह उन्होंने ऐसे अलग तरह से विवाह किया है। तो यहाँ पर हर प्रकार का रस है, परके रस भाव में राधा कृष्ण जो है वो विरह में रहते हैं और छुप छुप के मिलते हैं, कभी कोयल बनते हैं, कभी पंछी बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और स्वकीय रस में वो पति पत्नी बनकर भी रहते हैं। तो जब उनका विवाह हुआ तो एक जगह गुप्त विवाह हुआ उनका, भांडीर वन में। वो छोटे छोटे थे, चला आंधी तूफान आया तो छोटे छोटे भगवान जो थे राधा और कृष्ण 16 वर्ष के बन गए अचानक, सबके कोई नहीं था वहाँ पर, ओनली टू ऑफ देम। जैसे 16 वर्ष के हो गए तो तुरंत ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि हम आपका विवाह करना चाहते हैं। तो तुरंत दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया और ब्रह्मा जी ने उनका पुरोहित किया और ब्रह्मा जी ने उनका उनको फेरे लगाए और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कन्यादान किसने किया, किसी व्यक्ति ने उधर कन्यादान किया उनका और फेरे लगवाए ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी को दक्षिणा देने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने दक्षिणा मांगी तो भगवान ने कहा क्या दूँ दक्षिणा में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आपके द्विगल जोड़ी के चरणों की भक्ति देना। तो भगवान ने उनको दक्षिणा में राधा कृष्ण अपने चरणों की भक्ति प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और फिर ये दोनों भांडीर वन से लीला करते करते निकले, यमुना जी में उतरे, वहाँ पर कमल के उछलते हुए उन्होंने खेल किया, कमल को यहाँ फेंका वहाँ फेंका, फिर वहाँ से निकले, फिर वहाँ से नंदगांव आए, फिर वहाँ से जावट गए, वहाँ से कुकला बन गए, ऐसे वहाँ से कामे बन गए और बहुत दूर दूर तक उन्होंने लीला किया और फिर वापस लौट के भांडीरवन आए, वापस छोटे से हो गए 2-3 साल के। तो फिर नंद बाबा ढूंढे ढूंढे आ गए, कहाँ गया मेरा काना, तो राधा रानी ने कहा ये लो अपना काना, तो बालक को गोद में लिया और फिर नंदगांव चले गए। तो ये गुप्त लीला है। तो ऐसे बरसाने का यहाँ का क्षेत्र का जो लीला है बहुत अद्भुत है। ये उत्कट प्रेम लीला है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई काम वासना नहीं है। और उदानगढ़ की लीला हो गई, फिर हम लोग भी मानगढ़ पर आए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि वो श्रीजी मंदिर से लेकर चिकसोली गांव के अंत तक जितनी भूमि है उसको गहवर बन कहते हैं। गहवर बन जो है मराठी में भी आप जानते हैं गहवर का मतलब क्या है। गहवर मतलब अति उत्कट भावना, जब कोई भाव विभोर हो जाता है तो उसको गहवर कहते हैं। तो ये गहवर बन है अति उत्कट भावनाओं का। और इसकी विशेषता ये है कि गहवर बन राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से प्लांट्स लगाए हैं, अपने हाथों से वृक्ष लगाए हैं, अपने हाथों से बेली लगाए हैं, अपने हाथों से सिंचन किया उनका, उनका परवरिश किया, उनको बढ़ाया है। और बचपन में जब छोटे छोटे थे तो राधा और कृष्ण वेलियों का विवाह वृक्षों से करते थे यहाँ पर। और गहवर वन की विशेषता यह है कि यहाँ पर सब सब चीज़ कमान के रूप में है, एज एन आर्च, एवरीथिंग इज आर्ची हियर, हर चीज़ ऐसे ऐसे बनी हुई है और उस पर बेलियाँ घूम रही हैं, फूल घूम रहे हैं, ऐसे सब पौधे घूम रहे हैं। और ऐसे एकदम लगता है कि कोई ऐसे जैसे जंतर मंतर है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना है ऐसे, लेकिन सब जगह ऐसे आर्च बने हुए हैं, उसमें वेलियाँ ऐसे बहती रहती हैं। और फिर राधा रानी श्रृंगार करके आती हैं तो कृष्ण एक जगह मिलते हैं उनको सखियों के, वृंदा देवी के आदेश के अनुसार। और फिर कृष्ण उनको वहाँ से हाथ पकड़कर गहवर वन के अंदर ले आते हैं और दाहिने हाथ से उनका हाथ पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ से एक एक वेली ऐसे ऊपर कर रहे हैं, संवार रहे हैं, बोलते हैं संवार ना कहते, तो एक एक वेली उनको संवार रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं, उनको अंदर ले जा रहे हैं। प्यारी जू आगे चल गहवर मन भीतर, जहाँ कोयल बोली रही, ऐसे भजन है जो स्वामी हरिदास ने लिखा है। उसमें कैसे राधा रानी को ठाकुर जी यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद हाथ पकड़ बड़े प्रेम से अंदर निकुंज में ले जाते हैं और अंदर पुष्पशैया में भी विराजमान हो जाते हैं, फिर सखियाँ आकर उनकी सेवा करती हैं, ऐसे गहवर वन की लीला है। और गहवर वन जो है वो अति उत्कट राधा रानी का प्राइवेट कुंज है और यही गहवर वन का एक स्वरूप मायापुर धाम है। इसका कनेक्शन बहुत गहरा और अद्भुत है कि जब विरजा और कृष्ण का मिलन हो रहा था तो राधा रानी वहाँ मिलने आई थी तो विरजा और कृष्ण गायब हो गए, फिर श्रीदामा वहाँ पर पहरा दे रहे थे तो उन्होंने पूछा कृष्ण कहाँ हैं, बोले कोई नहीं यहाँ पर, तो क्योंकि कृष्ण का राधा रानी के आने की खबर मिलते ही कृष्ण और विरजा दोनों गायब हो गए। फिर राधा रानी चली गई, अगली बार आई उनको पता चला कि फिर विरजा और भगवान मिल रहे हैं। तो इस समय भागने का समय नहीं मिला, तो विरजा क्या हुई, अचानक नदी बन गई विरजा, और भगवान नदी किनारे ऐसे विरह में बैठे हैं, ऐसे मानो राधा रानी की याद में बैठे हैं। तो उस समय सुदामा का और राधा रानी का झगड़ा हुआ, क्योंकि सुदामा उनको अंदर छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पहरेदार थे। तो राधा रानी को सुदामा बहुत बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं आपको शाप देती हूँ, तुम राक्षस बन जाओगे, पृथ्वी पर राक्षस बन जाओगे। सुदामा भी कुछ कम नहीं है, वो कहते हैं कि तुम भी पृथ्वी पर जाओगी और 100 साल आपके प्रियतम से विरह में रहोगी। इसलिए यहाँ पर उनका 100 साल वियोग हुआ है, और सुदामा जी शंखचूड़ बनकर अवतार लेते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो ये जो विरजा भगवान कृष्ण का जो मिलन का लीला है, उसमें राधा रानी को लगा कि हम मैं अभी ऐसा एक वन बनाऊंगी, इसमें इतनी सुंदर पक्षी रखूंगी, इतने सुंदर सरोवर बनाऊंगी, इतने सुंदर उपवन बगीचा बनाऊंगी, इतने सुंदर वातावरण बनाऊंगी कि कृष्ण मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो स्वयं अपने हाथ से उन्होंने बड़े प्रेम से और बड़े भाव से एक नगर बनाया, और फिर उन्होंने बैठकर, राधा रानी ने बैठकर मुरली बजाई स्वयं। आप जानते नहीं शायद, राधा रानी कृष्ण की मुरली की गुरु हैं, राधा रानी ने भगवान को मुरली बजाना सिखाया है, राधा रानी ने भगवान को नृत्य करना सिखाया है। वो नटराज के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन नटराज बनने की गुरु राधा रानी है, वो भी एक कारण है उनका थोड़ा सा मान करने का, चलो बाद में बताता हूँ, अभी क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो भगवान राधा रानी ने फिर मुरली बजाई, तो उसकी तान सुनकर कृष्ण भगवान भाग भागते आए, वो देखा इतना सुंदर वन है, और उसका बड़ा गौरव किया है कृष्ण भगवान ने कि आपने इतना सुंदर वन बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, और बल्कि सब संतों को भी बुलाऊँगा और सब अद्भुत पक्षियों को बुलाऊँगा, और आपका वन जो है वो संतों से और पक्षियों से और कुंजरव से और सुंदर ध्वनि से एकदम दिव्य बना दूंगा, और मैं आपके संग में ही रहूँगा। और वो जो धाम है बनाया, नगरी है, वो मायापुर नगरी है, जहाँ पर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। तो ये जो गहवर वन है और मायापुर जो है हमारा नवद्वीप का, ये सेम है, क्योंकि दोनों ही राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है कृष्ण के संग को प्राप्त करने के लिए। तो नृत्य की बात आई, तो राधा रानी उनको नृत्य सिखाती है, और कृष्ण भगवान इतने 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 कुशल है कि कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन राधा रानी का संग ज़्यादा देर मिलना चाहिए, इसलिए आसान चीज़ भी गलत गलत सीखते हैं। मतलब समझो अभी ताल ऐसा कुछ स्टेप लेना है डांस में, तो उनके लिए बहुत आसान है बहुत, लेकिन वो जानबूझ के गलत स्टेप डालते हैं। तो राधा रानी कहते हैं अरे ऐसे नहीं ऐसे, फिर दोबारा दिखाती, फिर वो दोबारा गलत स्टेप डालते, फिर वो कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। बड़ी भोली है, बड़ी कोमल हृदय है, उसको समझ में नहीं आता सब ये छल कपट। तो बहुत देर बेचारी भोली वाली राधा रानी ऐसे छल कपट के जाल में फंस जाती है, और लेकिन बाद में ध्यान में आता है उसको कि ये छलिया जो है ना मुझे छल रहा है, तो फिर वो ठट करके पाँव जमीन पे मारती है और निकल जाती है और मान करके बैठ जाती है, फिर उनको मनाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे है कृष्ण भगवान, ऐसे ही सब कुछ डांस तो उनसे सीखा राधा रानी से। और एक बार ऐसे आए और कुछ डांस करने लगे, तो सखियाँ बोली इतना क्यों इतराते हो, सब कुछ तो राधा रानी ने सिखाया है, इतना क्यों इतराते हो, इतना गर्व करने की क्या बात है, उनको इनके शिष्य हो तुम, नृत्य के शिष्य हो, ज़्यादा गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, ये तुमने तुमसे सीखा नहीं है, ये मेरा खुद का डांस है। बोले ये कहाँ से सीखा, तो वो बताने लगे ऐसे ऐसे मेरा ये नृत्य है। तो बोले सब तुम बेकार की बातें करते हो, तुम ऐसे सब कोई तुम्हारे पास कोई कला नहीं है, सब राधा रानी ने दी हुई है, तो ऐसा इतना ही गर्व है तो ऐसा कुछ अद्भुत दिखाओ जो हम भी उस पर देखकर आश्चर्य करें। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम आपको एक दिन ज़रूर दिखाएंगे, अद्भुत नृत्य दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कालिया के सर पर नाच किया, क्योंकि हम लोग जनरली नाच करते हैं ना तो एक स्थिर भूमि पर नाच करते हैं ना, वी नीड अ फर्म ग्राउंड, उस पर हम डांस करते हैं, स्टेज चाहिए हमको। लेकिन कालिया का सर जो था कोई वो स्थिर भूमि नहीं थी, वो हर कदम रखते ही नीचे जाता था, वो हर एक कदम पर उसका एक एक सर नीचे जाता था। ऐसे अस्थिर भूमि पर उन्होंने अद्भुत नृत्य दिखाया और गोपियों का हृदय जो है वो आह्लादित किया, उन्होंने संतुष्ट किया उनको। तैसे भगवान की अद्भुत लीला है। तो यहाँ पर जब उन्होंने एक दूसरे का श्रृंगार किया, दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया, श्रृंगार पूरा हुआ तो फिर राधा रानी बोली, अभी मेरे मुख का वर्णन करो आप। तो कृष्ण भगवान इतने मोहित हो गए उनका चेहरा देखकर, क्या कहे उनके चेहरे के सौंदर्य को, कैसा वर्णन करे, तो कुछ सूझ नहीं रहा था उनको कि कैसे भी, कौन सी उपमा दूं, क्या करूं, कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, कौन सा काव्य कहूं, कौन से छंद में कहूं। तो सोच रहे थे तो आकाश में देखा तो उनको चंद्रमा नजर आया, बहुत सुंदर पूर्णिमा का चंद्रमा। तो उनको लगा ठीक है ये बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा कि आपका चेहरा तो चंद्रमा जैसा है, तो समझो हम हमारी पत्नी को कहते कि आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है तो पूछेंगे क्या बनाऊं आज। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का नाम लेने के बाद भी आनंद नहीं हुआ, क्रोधित हो गई, हो मान कर बैठी, रूठ गई, नाराज हो गई, बोले क्या बात है, तो चंद्रमा से तुलना करते हो, चंद्रमा के ऊपर दाग है और हमारे सौंदर्य पर दाग बिल्कुल नहीं है, हमारा सौंदर्य दागहीन है, कोई इसमें कोई दोष नहीं है, तो हमारी तुलना चंद्रमा से कैसे कर सकते हैं हम। चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के बाद में क्षय होता है उसका, बिल्कुल गायब हो जाते हैं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा से जो क्षय शुरू होता है, हमारे सौंदर्य में कोई क्षय नहीं है। क्षय तो छोड़ो, वृद्धि है, वृद्धि हर क्षण हमारे सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो क्षय होने वाले चंद्रमा से तुलना कैसे हो सकती है हमारी। फिर कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है कई बार, हमारे सौंदर्य को कोई ग्रहण लगता नहीं है, तो ऐसे ग्रहण लगने वाले वस्तु से हमारी तुलना कैसे हो सकती है। फिर कहते चंद्रमा का जो है बहुत सारे तारे जो है ना, तारे नक्षत्र जो है, तारे तारे नक्षत्र नहीं तारे, उनको बनाने के लिए डोरे डालते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मुझे, मतलब बहुत सारे तारे उन पर नजर रखते हैं अपने कि मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारा जो प्रेम है वो एकदम शुद्ध है, ना हमें कोई देख सकता है ना हम किसी को देखते हैं, केवल आपको देखते हैं, हमारा प्रेम जो है वो पवित्र है कंप्लीटली। तो चंद्रमा जैसे बहुत लोगों के साथ देखने वाले व्यक्ति से आप तुलना कैसे कर सकते हैं। ऐसे आठ कारण दिए राधा रानी ने कि आपने हमारा अपमान किया है चंद्रमा का उपमा देकर, तो जाकर रूठ गई, इस पर्वत के नीचे आके बैठ गई। फिर कृष्ण वहां पर आए तो दो कदम और चढ़ गई, फिर कृष्ण और दो कदम चढ़े, फिर वो और दो कदम चढ़ी, उतने में ललिता आई वहां पर, तो बोले क्या हो रहा है, तो बोले ऐसे ऐसे हुआ हमने उनका चंद्रमा का उपमा दिया, तो वो नाराज हो गई, वो कुछ करो। तो ललिता बीच में आई, उन्होंने कृष्ण का हाथ लेकर राधा रानी के हाथ से मिलाना चाहा, लेकिन वो उधर देखने लगी, हाथ झटक दिया उन्होंने, तो फिर कृष्ण नाराज हो गए बहुत, नीचे बैठ के रोने लगे। तो ललिता कृष्ण को मनाने आई, बोले जाओ कुछ करो, राधा रानी को मनाओ, मैं तो मर जाऊंगा। तो ऊपर गई तो राधा रानी और ऊपर चढ़ गई, तो ऐसे ललिता जी का अप एंड डाउन बहुत बार हो गया, तो ये बोल रहे जाओ मनाओ और वो झिटका रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, तो एकदम चोटी पे पहुंच जाती है। तो ललिता कहती आवत जावत हार गई रही, मतलब थक गई मैं अभी ऊपर नीचे करके, अभी क्या करूं, मतलब कुछ करो। वो कहते मैं मर जाऊंगा, मेरा देहांत हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगा अगर वो रूठ कर बैठी हुई है। चरणों में गिर जाते हैं, अश्रुओं से जिनको चरण धोते हैं, फिर भी वो नहीं मान रही है। फिर अचानक ललिता आती है कि उस कृष्ण के कान में बोलती है, और वो भी चले जाती है और कृष्ण भी चले जाते हैं, और राधा रानी अकेले रूठ कर बैठी हुई है। कुछ देर बाद वहां से एक मोर आता है, बहुत सुंदर मोर आता है, और वो नृत्य करने लगता है, अपना पिसारा जो है ना पंख खोल कर नृत्य करने लगता है। फिर जब वो नृत्य करने लगता है तो बहुत सारे मोर आते हैं और मोरनियाँ भी आ जाती हैं, और सब मिलकर नृत्य करने लगते हैं, और सब सखियाँ भी आ जाती हैं, अरे मोर आकर नृत्य कर रहे हैं। तो मोर को देखकर बादल भी आ जाते हैं, वो भी हल्की हल्की बूंदे डालते हैं वहाँ पर। फिर सब सखियाँ आती हैं और अपने पायल और अपने कंगन, इनको खनका के एक नया संगीत उत्पन्न करते हैं, न्यू मेलेडी। कोई मृदंग नहीं, करताल नहीं, कुछ नहीं, सितार नहीं, मुरली नहीं, कुछ नहीं, केवल कंगन और पायल को खनका के एक सुंदर संगीत तैयार करते हैं और उस पर मोर नाचने लगते हैं। ना सुंदर नृत्य करते हैं कि फिर ललिता विशाखा सब राधा रानी के पास में आते हैं, बोलते हैं राधा रानी देखो देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं मोर। तो फिर राधा रानी मुड़ के देखती है और एकदम मोहित हो जाती है और अचानक वो भूल जाते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, रूठ गई हूँ वगैरह वगैरह, बड़े चाव से उनको देखने लगती है। फिर सखियों को और उत्साह आता है तो भी और अच्छी तरह से म्यूज़िक देते हैं सब लोग मिलकर, तो राधा रानी भी म्यूज़िक देने लगती है उसके बाद में। तो फिर मोर जो है ना वो एकदम खिल खिल के नृत्य करता है, इतना प्रेम से, राधा रानी मुझे देख रही है, उसको इतना उत्साह आता है और इतने प्रेम से नृत्य करता है कि राधा रानी प्रेरित हो जाती है और खुद उतर जाती है और मोरनी की तरह उस मोर के साथ नृत्य करने लगती है और दोनों मिलकर बड़े देर तक झूम झूम कर नृत्य करते हैं। और एक नृत्य के पोज में वो मोरनी और मोर गले मिलते हैं, तब मोरनी को, राधा रानी को समझ में आता है कि ये कृष्ण है। तो कान में क्या बोला ललिता ने, जाओ मोर बनो। तो जाके मोर बनकर आए। तो वो लीला मोर कुटी पे हुई, मान मंदिर के सामने, जहाँ पर भगवान को, भगवान ने राधा रानी को मोर बनकर रिझाया है, उनके मान को भंग कर दिया है। यहाँ पर अनंत मोर लीला है, ये तो रूठ की बनी हुई मोर लीला है। एक बार तो ऐसे ही राधा कृष्ण एक साथ आए और कहते हैं कि अच्छी सुंदर हवा बह रही थी, दोनों के उत्तरियों को ऐसे हवा में उड़ा रहे, राधा की चुंदरी, कृष्ण का उत्तरी ऐसे हवा में उड़ रहा था। और उसको देखकर राधा रानी को इतनी प्रेरणा हुई कि उन्होंने अपने पैर पायल और कंगन से सुंदर वाद्य बजाया और दोनों ने नृत्य किया, मोर जैसा नृत्य किया। और अलग लीला में उन्होंने, दोनों ने मोर और मोरनी का रूप धारण किया और नृत्य किया। किसी और लीला में राधा रानी ने अपने मोरनिया लेके आई और कृष्ण अपने मोर लेके आए और सब लोगों ने बैठकर मोर मोरनी का नृत्य देखा। ऐसे अनंत मोर लीला यहाँ पर चलती रहती है। स्वामी हरिदास जी ने और सूरदास जी ने इनके मान लीला का, बहुत सुंदर मोर लीला का वर्णन किया है अपने गीतों में। तो ये बड़ी उत्कट भूमि है, हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन उसके जो अंदर का रहस्य का भाव है वो समझना बहुत मुश्किल है। और यही वो जगह है जहाँ पर राधानाथ स्वामी 19 साल की उम्र में आए थे और यहाँ पर रुके थे। तभी इतना ही था पर्वत, इसके ऊपर तो अभी बाद में बनाया गया है, ये तो पर्वत का भाग नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन है। पर्वत का भाग यहाँ तक है, वो जो पेड़ है नीम का उसके नीचे वो सोया करते थे और नीचे जाकर पानी लेके आ करते थे। इसके आगे एक गुफा है, अंदर मंदिर के अंदर गुफा है, दो मंजिल नीचे आप जा सकते हैं, उधर अंदर एकांत जगह है। तो आप जो जर्नी होम पढ़ी है उसका वर्णन यहाँ पर आता है। एक कथा मैं ज़रूर बताऊँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर बाबा भी सोते थे, रमेश बाबा जी महाराज, तो बैठ के भजन करते थे उनका, इतना ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते थे, नाचते थे रात को। और डकैतों को बहुत कष्ट होता था कि ये लोग यहाँ पर आके हमको, हमारा प्राइवेसी ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर डकैत लोग बंदूक लेकर आए और ऊपर आए, खबर मिल गई थी, ऊपर आए और धमकाया उनको, चले जाओ यहाँ से, हमारा स्थान है, आपको यहाँ रहना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो ये ऐसे देखते रहे उनको, निर्विकार, ना डर है ना गुस्सा है, कुछ नहीं, देखते रह गए। तो वो डकैतों को फिर आश्चर्य हो गया, हाँ, तो फिर कहा जान से मार देंगे आपको। बाबा जी ने कहा अरे मरने के लिए तो आए हैं। तो डकैत हार गए, आगे क्या बोलेंगे, किसी को डरने का, मरने का अगर डर दिया गया और वो मरने का डर ही नहीं तो और क्या डराएंगे उसको, चले गए वो डकैत, ने जगह खाली करके चले गए। तब से बाबा रह रहे हैं यहाँ से, 52 साल में आए थे। कितनी बड़ी बात है, देखो एक साधु जो है ना वो भगवान के धाम में मरने के लिए आता है, वो मरने का डर नहीं, इसको भगवान से प्रेम है, उसको मृत्यु से डर नहीं होता है। तो ऐसे मृत्यु से जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको मृत्यु का डर देके क्या फ़ायदा है, वो मृत्यु का डर तो हमको दे सकते हैं, हम जैसे लोगों को जान से मार देंगे तो हम डर के भाग जाएंगे। जो साधु है, जो समर्पित है कृष्ण के चरणों में, हाँ, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, उस गली में आए इसलिए है मरने के लिए। हाँ, ये गीत बाबा बहुत गाते हैं, गाते थे पहले बहुत, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तो ये जो निर्भयता जो है ना, ये हमारे बाबा महाराज का एक बहुत विशेष गुण है, निर्भयता। कभी किसी डरते नहीं और असत्य के साथ संघर्ष करते रहते हैं हमेशा, जो गलत चीज है उसके साथ बिना डर के बोल देते हैं। और हरिनाम पर अटूट विश्वास है उनका। हमारे कैंप में जितनी चीज चल रही है चीज़ें, वो अधिकतर चीज़ें उनके द्वारा प्रेरणा से प्राप्त हुई है, और आज भी वो हम उसको चलाते हैं उनकी प्रेरणा के द्वारा। तो भगवान नाम पर अटूट निष्ठा, राधा कृष्ण पर अटूट भक्ति, और उसकी वजह से निर्भयता, ये उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए यहाँ पर कि हमें भी वो निर्भयता प्राप्त हो। हमें भी वो निर्भयता तभी प्राप्त होती है जब हम राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं। हम सब लोग जो देहीधारी है वो सब जगह भयभीत रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, हाँ ये जीव का लक्षण है जो देहधारी है। तो जो व्यक्ति देहधारी है वो भय से हमेशा आवृत रहता है, लेकिन एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर वो जीव भय से मुक्त हो जाता है, वो है राधा और कृष्ण के चरण कमल। उसका जो आश्रय लेता है वहीं पर जीव भय मुक्त हो जाता है, सही रूप में निर्भय हो जाता है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। इन्होंने कृष्ण भगवान के और राधा रानी के चरणों को अपना जीवन धन बना लिया है, उसको जीवन में कोई डर नहीं रहता है, वो निर्भय हो जाते हैं। तो संतों के संग से हम यही सीखते हैं कि कैसे हमको उनका चरणों का सहारा लेना है और सब सहारे ठुकराने हैं, क्योंकि डूबी गाऊं क्या डूबी जब उसकी नैया सामने थे किनारे, उसका मतलब क्या कि जिस नाव के सहारे हम किनारे पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो किनारा नजर में था, सामने ही था, लेकिन नाव उनकी उधर ही डूब गई। ये दुनिया के सहारे ऐसे होते हैं, चाहे वो पिता का हो, पति का हो, माता का हो, या पुत्र का सहारा हो, या पत्नी का सहारा पति को हो, पत्नी को पति का सहारा हो, ये सब सहारे अशाश्वत रहते हैं और अचानक दगा दे जाते हैं। सब सहारे टूट जाते हैं, ऐन मौके पर टूट जाते हैं कभी कभी। बहुत सहारा रखते हैं हम, बहुत भरोसा रखते हैं उन पर, लेकिन दुनिया के सारे सहारे जो है वो ऐसे अनिश्चित रहते हैं, कब दगा देंगे, कब असहाय बना देंगे, पता नहीं है। लेकिन एक सहारा ऐसा है जो किसी भी समय दगा नहीं देता है, जीवन मृत्यु के साथ भी दगा देता नहीं है, जीवन काल में देता नहीं है, इस ब्रह्मांड में देता नहीं है, ना वैकुंठ में देता है, ना गोलोक में देता है। हर समय हर जगह पर हर स्थिति में वो सहारा अटूट रहता है और बना रहता है। वो एक ही सहारा है, वो कृष्ण भगवान है। तो हम सब लोगों को इन सारे सहारों पर समय पर जितना समय है उतना ठीक है श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन परम श्रद्धा जो है वो एक ही सहारे पर रखना चाहिए, और वो सीखने के लिए हम ब्रज में आते हैं। कैसे गोपियों ने अनन्य सहारा लिया कृष्ण भगवान का, विरह में भी रहे तो उनके सहारे रहे, सत्संग में रहे तो भी उनके सहारे रहे। तो ब्रज में आकर हमको यही सीखना है कि सब सहारे झूठे हैं, सब सहारे अशाश्वत हैं, और एक ही सहारा शाश्वत है, जन्म जन्मांतर तक शाश्वत है। वो ये जन्म ही नहीं, आप जन्म कहीं लेंगे तो भी एक ही शाश्वत सहारा है, वो कभी दगा नहीं देता हमको। तो आइए हम आज हम सब यहाँ बैठकर 8 फरवरी के संध्या को यहाँ बैठकर राधा रानी को, कृष्ण भगवान को प्रार्थना करें कि सारे तथा कथित सहारों से हमारा दिल उड़ जाए और हमारा दिल केवल आपके चरणों का सहारा ले लें, और उसी पर श्रद्धा रखकर हम अपने जीवन को बिताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्री बरसाना धाम की।